भोग को हथियार बनाने की नैतिक पत्नशीलता। भोग का जानबूझकर हथियार के रूप में उपयोग नागरिक आबादी को नियंत्रित करने, दबाव डालने या उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे घृणित उल्लंघन है। राजा में इस अपराध को एक व्यवस्था में परिष्कृत किया गया है। जो कुछ सामने आया है वह केवल एक मानवीय विफलता नहीं है, बल्कि प्रभुत्व का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो सहायता के बहाने प्रस्तुत किया गया है। इस रणनीति के केंद्र में यासर अबू शबाब की शख्सियत है, जो एक पूर्व अपराधी से सहयोगी बन गया और एक सैनिकृत वितरण व्यवस्था का थोपा जाना जो खिलाने से ज्यादा मारता है। झूठे आरोपों, प्रॉक्सी युद्ध और भोजन तक पहुंच पर घातक नियंत्रण के माध्यम से इसराइल ने मानवीय सहायता को पीड़ा और समर्पण के रंगमंच में बदल दिया है। फिलिस्तीनियों को सहायता काफिलों की ओर लुभाया जाता है केवल गोलीबारी का शिकार बनने के लिए, एक ऐसी रणनीति जो जंगली जानवरों के साथ व्यवहार में भी अमानवीय मानी जाएगी। यासर अबू शबाब अंडरवर्ल्ड से प्रॉक्सी प्रवर्तक तक। यासर अबू शबाब की कहानी मोचन की नहीं बल्कि कब्जे द्वारा हेरफेर किए गए अवसरवाद की है। कभी गाजा के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक जाना माना चेहरा अबू शबाब को ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी के लिए कैद किया गया था, जब तक कि वह अक्टूबर 2023 में भाग नहीं गया। इसके बाद की अराजकता में वह तथाकथित जनशक्ति, जिसे वैकल्पिक रूप से आतंक विरोधी सेवा कहा गया, के स्वघोषित प्रमुख के रूप में उभरा। इसराइल, जो फिलिस्तीनी एकता को तोड़ने और हमास को अप्रत्यक्ष शासन के माध्यम से कमजोर करने के लिए उत्सुक था, ने कथित तौर पर अबू शबाब के समूह को हथियारबंद और सशक्त किया ताकि वह आईडीएफ नियंत्रित क्षेत्रों में संचालित हो सके। यह संबंध नया नहीं है, औपनिवेशिक शक्तियां लंबे समय से नैतिक रूप से समझौता किए गए स्थानीय लोगों पर निर्भर रही हैं ताकि वे विदेशी नियंत्रण के प्रवर्तक के रूप में काम करें। लेकिन गाजा में इस रणनीति को तत्काल घृणा का सामना करना पड़ा। अबू शबाब का सहयोग इतना गहरा विश्वासघात माना गया कि उनके अपने कबीले और परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक ऐसे समाज में जहां रिश्तेदारी और एकजुटता पवित्र हैं, इस सार्वजनिक अस्वीकृति ने उन्हें परित्यक्त बना दिया। वह न केवल बहिष्कृत हुआ, वह उस हर चीज का प्रतीक बन गया जिसे कब्जा भ्रष्ट करने की कोशिश करता है, वफादारी, पहचान, प्रतिरोध। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कब्जेदार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सामुदायिक विनाश में कैसे बदल देता है। झूठे आरोप और सहायता का पतन। इसराइल की गाजा की सहायता व्यवस्था पर घुटन भरे नियंत्रण के औचित्य का केंद्र यह आरोप था कि हमास मानवीय आपूर्ति को लूट रहा था। ये दावे, जो 2024 के अंत में सामने आए, यूएनआरडब्ल्यूए को बदनाम करने और महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए। फिर भी विश्वसनीय रिपोर्टों ने बाद में खुलासा किया कि सहायता की सबसे गंभीर चोरी 109 संयुक्त राष्ट्र ट्रकों की लूट हमास द्वारा नहीं बल्कि अबू शबाब की ताकतों द्वारा की गई थी। फिर भी यह कथानक कायम रहा जिसे मौजूदा सहायता बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और इसे गाजा मानवीय फाउंडेशन जीएचएफ के साथ बदलने के लिए हथियार बनाया गया, जो मई 2025 में इसराइल और अमेरिका के समर्थन से स्थापित एक सैनिकृत तंत्र था। यहया सिनवार की शव परीक्षा इसराइल के कथानक को और अधिक विरोधाभास। इसराइल के दावों को और अधिक विरोधाभास यहया सिनवार, हमास के एक प्रमुख नेता, की मृत्यु के समय की स्थिति करती है। इसराइल के स्वयं के कॉरनर ने निर्धारित किया कि सिनवार ने अपनी मृत्यु से पहले 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, एक विवरण जो गंभीर सवाल उठाता है। यदि हमास व्यवस्थित रूप से सहायता चुरा रहा था जैसा कि इसराइल का दावा है, तो यह असंभाव्य है कि उनके नेता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। यह सबूत सहायता वितरण में व्यापक विफलता की ओर इशारा करता है। यह सुझाव देता है कि आपूर्ति को अन्य समूहों जैसे अबू शबाब की मिलिशिया द्वारा रोका जा रहा है, न कि हमास द्वारा जमा किया जा रहा है। सिनवार जैसे प्रमुख व्यक्ति की भुखमरी कठोर वास्तविकता को रेखांकित करती है। सहायता उन तक नहीं पहुँच रही है जिन्हें यह मदद करने के लिए है, चाहे इसे कोई भी नियंत्रित करे। गाजा मानवीय फाउंडेशन, भूख के खेल वास्तविकता में बदल गए। जीएचएफ ने समन्वय और सुरक्षा का वादा किया। जो इसने दिया वह नरसंहार था। वितरण बिंदु मृत्यु क्षेत्र बन गए। आंसू गैस, रबर की गोलियां, असली गोलीबारी और भगदड़ ने भोजन की खोज को दैनिक रूसी रुलेट के खेल में बदल दिया। लगभग 800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और हजारों अन्य घायल हुए हैं, जबकि वे सहायता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यह व्यवस्था, जो झूठे आधारों पर बनी और हिंसा के माध्यम से कायम है, न केवल भूख को संबोधित करने में विफल रही बल्कि इसे संस्थागत बना दिया। यह राहत की नहीं बल्कि नियंत्रण की तर्कसंगति को दर्शाता है। खाने के लिए आपको आज्ञा माननी होगी, जीवित रहने के लिए आपको समर्पण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह एक युद्ध अपराध है। जिनेवा सम्मेलनों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल आई का अनुच्छेद 54 स्पष्ट रूप से नागरिकों को युद्ध की विधि के रूप में भुखमरी देने पर रोक लगाता है, जिसमें नागरिक आबादी के जीवित रहने के लिए अपरिहार्य वस्तुओं को निशाना बनाना या नष्ट करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रोम संयम भी भूख के उपयोग को हथियार के रूप में अपराधी बनाता है। विश्वसनीय एजेंसियों को ध्वस्त करके, सहायता से इनकार करके और वितरण स्थलों पर नागरिकों को मारकर इसराइल ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। यह एक हथियार है। इंसानों का शिकार चारा के ऊपर मानवता का अंतिम निम्न बिंदु। शायद इस व्यवस्था का सबसे भयावह पहलू यह है कि यह बुनियादी नैतिक पदानुक्रमों को उलट देता है। इसराइल में, जैसा कि कई देशों में, चारा के ऊपर जंगली जानवरों का शिकार करना अवैध है। यह प्रथा नैतिक मानी जाती है, निष्पक्ष शिकार सिद्धांतों का उल्लंघन जो गैर मानव प्राणियों को भी अनावश्यक पीड़ा से बचाता है। फिर भी गाजा में भूखे नागरिकों को सहायता के बहाने भोजन की ओर लुभाया जाता है, केवल सैनिकों द्वारा गोलीबारी का शिकार बनने के लिए। जो हिरणों के लिए निषिद्ध है, वह बच्चों के खिलाफ वैध कर दिया गया है। यह नैतिक उल्टफेर कोई संयोग नहीं है। यह अमानवीकरण का तार्किक अंतिम बिंदु है। जब एक समुदाय को पूरी तरह से मानव नहीं माना जाता, उनकी पीड़ा पृष्ठभूमि का शोर बन जाती है, उनकी मृत्यु प्रशासनिक नैतिक खाई सबसे अधिक तब खुलती है जब युद्ध की धुंध में नहीं बल्कि उन नीतियों की स्पष्टता में जो स्वयं जीवित रहने को कब्जेदार द्वारा राशनबंद विशेषाधिकार के रूप में मानती हैं। गाजा के भूखे लोग संपार्श्विक क्षति नहीं हैं, वे निशाने हैं, लुभाए गए, गोलीबारी किए गए और एक ऐसी व्यवस्था द्वारा त्याग दिए गए जो जानवरों की जिंदगी को उन लोगों से ज्यादा कानूनी मूल्य देती है जिन्हें यह भुखमरी देता है। निष्कर्ष, शब्दों से परे एक अपराध। गाजा में भूख का हथियारीकरण यासर अबू शबाब जैसे सहयोगियों द्वारा सुगम और इसराइल की सैनिकृत सहायता व्यवस्था के माध्यम से संस्थागत केवल एक युद्ध रणनीति नहीं है, यह मानवीय गरिमा का अपवित्रण है। यह एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें भोजन प्रभुत्व का साधन बन जाता है, सहयोग को पुरस्कृत किया जाता है और नागरिकों को खाने की जरूरत के अपराध के लिए कत्ल किया जाता है। मानवीय एजेंसियों को सशस्त्र द्वारपालों द्वारा प्रतिस्थापित करने ने गाजा के सहायता गलियारों को मृत्यु गलियारों में बदल दिया है। यह केवल एक राजनीतिक विफलता नहीं है, यह मानवता के खिलाफ एक अपराध है और सबसे निंदनीय अभियोग उस तुलना में निहित है जिसे कभी नहीं करना चाहिए था कि जानवरों को गाजा की भूखी आबादी की तुलना में अधिक नैतिक विचार प्राप्त होता है। यह घृणित उल्टफेर वैश्विक आक्रोश की मांग करता है, राजनीति के मामले के रूप में नहीं बल्कि अंतरात्मा के सवाल के रूप में। एक ऐसी दुनिया जो इसे अनुमति देती है वह स्वतंत्र पतन में है, न केवल नैतिक रूप से बल्कि सभ्यतागत रूप से।